भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 24वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है गोवर्धन की पूजा। सो इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे, आप सब दोहराइए पीछे। श्री शुक उवाच भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव संगोपा इन्द्रयागकृतोद्यमान्। श्रीशुक उवाच भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव संगोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान्। आप में से कोई दोहराए। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा भगवान अपि भी तत्र एव उसी स्थान पर बलदेवेन बलराम द्वारा संयुतः के साथ अपश्यत् देखा निवसन निवास करते हुए गोपान ग्वालों को इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए याग यज्ञ के लिए कृत किया हुआ उद्यमान महान प्रयास। अनुवाद इस प्रकार है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी तथा अन्य आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में आगत तत्र एव शब्द यह सूचित करता है कि भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के उसी गांव में रहने लगे जिनकी पत्नियों ने अपनी भक्ति से उन्हें तुष्ट किया था। इस तरह उन्होंने उन ब्राह्मणों को तथा उनकी सती पत्नियों पर कृपा की जो अपने पतियों के सिवाय और किसी से संबंध नहीं रख सकती थीं। उसी स्थान पर कृष्ण के पिता नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले किसी न किसी तरह इंद्र यज्ञ की भव्य तैयारी कर रहे थे। तभी कृष्ण ने इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णपरिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरौ मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायी अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णारुत्कण्ठयोस्फुर। हरे कृष्ण। तो बहुत मधुर लीला, बड़ी ज्ञान प्रदान करने वाली लीला गोवर्धन लीला का प्रारंभ है इस अध्याय में। क्योंकि हम लोग भागवत सार कर रहे हैं, एक एक अध्याय पर चर्चा, इसीलिए बड़े विस्तार से इस गोवर्धन लीला को नहीं कहेंगे, अन्यथा कई दिन लग जाएंगे इस गोवर्धन लीला को कहने के लिए। तो जैसे जैसे अध्याय बढ़ते जाएंगे, चार अध्यायों में ये कथा है, तो अभी इस अध्याय में कैसे पूजा होगी, अगले अध्याय में भगवान गोवर्धन उठाएंगे, उसके अगले अध्याय में सारे जो गोप इत्यादि हैं उनको क्या प्रतिक्रिया करते हैं भगवान ने जब गोवर्धन को उठा लिया, और फिर 28वें अध्याय में चर्चा होगी, 27वें अध्याय में कि कैसे इंद्र और सुरभि आकर भगवान से क्षमा याचना करते हैं। तो ऐसे ही चार अध्यायों में हैं, हम लोग भी इसी क्रम से जाएंगे। तो ये जो लीला है गोवर्धन लीला, ये बड़ी महत्वपूर्ण लीला है। हम लोग उस दिन दो अध्यायों पहले सुन रहे थे जब गोपियाँ वेणु गीत दोहरा रही थीं, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, कि हरिदास वर्य अर्थात गोवर्धन को हरिदास वर्य मतलब हरिदास में भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो भागवत में तीन लोगों को हरिदास कहा गया है, युधिष्ठिर महाराज को, उद्धव को और गोवर्धन को। तो युधिष्ठिर महाराज को क्यों हरिदास कहा गया? युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, एक ही उद्देश्य से कि पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण का गुणगान हो सके। तो इस उद्देश्य से उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। सारे ऋषि मुनि आए, बहुत अन्य अन्य स्थानों से आए, और युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जानते हो ये इतने सारे ऋषि मुनि क्यों आए हैं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। तो कहने नहीं, कृष्ण का दर्शन करने नहीं आए हैं, वे तो ये देखने आए हैं कि ये कौन भक्त है जिसके द्वार पर खड़े होकर कृष्ण आने वाले ब्राह्मणों के चरण धो रहे हैं, ये देखने आए, आपको देखने आए, इसलिए उन्हें हरिदास कहा गया। उद्धव बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, प्रायः भगवान की तरह ही दिखते हैं, कृष्ण की तरह, कपड़े भी कृष्ण के ही पहनते हैं। कृष्ण एक बार जो कपड़े पहन लेते हैं वो दोबारा नहीं पहनते हैं, हमारे विग्रह सेवा की तरह नहीं है कि हर पांच दिन बाद वही ड्रेस आ जाती है। तो वो कृष्ण एक बार पहन लें फिर उद्धव पहनते हैं, फिर कृष्ण नहीं स्पर्श करते हैं, तो केवल नए कपड़े पहनते हैं श्री कृष्ण। तो उद्धव उनके कपड़े भी पहनते उनकी तरह दिखते हैं, भगवान बड़ा विश्वास करते हैं। गोपियों के पास भेजा था श्री कृष्ण ने उद्धव को कि जाओ थोड़ी सांत्वना देकर आओ ब्रज में गोपियों को, तो इतना निकट का मानते हैं, इसलिए वो भी हरिदास कहलाते हैं। और गोवर्धन हरिदास वर्य, गोवर्धन ने सब तरीके से भगवान की सेवा की। हरिदास वर्य क्यों कहा गया गोवर्धन को, भगवान चले गोवर्धन के ऊपर, अपने चरणों को उन्होंने गोवर्धन पर स्थापित किया, अपनी हाथ में उठा लिया गोवर्धन को। और गोवर्धन जिस प्रकार की सेवा करते हैं कृष्ण की, कहा जाता है हर रूप में, स्थान से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, सब तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि गोवर्धन के पद चिन्हों पर चलकर हम भी इस तरह से, गोवर्धन ने अपना स्थान दिया, अपने आप को दे दिया कृष्ण, उन पर चलते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण की सेवा गोवर्धन ने की, रास लीला भी रचाई गोवर्धन पर श्री कृष्ण ने, तो इसलिए हर गोवर्धन को भी, गोवर्धन को हरिदास भी कहा जाता है और हरिदास वर्य हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। तो इस अध्याय में इस गोवर्धन की पूजा का वर्णन है। तो पहले 11 श्लोकों में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण और नंद महाराज के बीच बातचीत होती है। 12वें श्लोक से आगे वर्णन है कि कैसे श्री कृष्ण नंद महाराज को विश्वास दिलाने के लिए कि उन्हें ये इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, एक गलत सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। और फिर आगे 24वें श्लोक से वर्णन है कि श्री कृष्ण कैसे गोवर्धन की पूजा के लिए कहते हैं। और अंतिम विभाग 31वें श्लोक से वर्णन है कि कैसे ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की। तो बड़ा महत्वपूर्ण यह अध्याय है। श्री कृष्ण इंद्र के मान को भंग कर रहे हैं। कल जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे थे तो स्मरण आ रहा था कैसे इंद्र ने इतनी बड़ी गलती की है, और फिर अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी। कल शाम को बहुत तेज आंधी, बारिश, रात को भी बहुत तेज बारिश हुई, शाम को भी बड़ी तेज बारिश हुई। तो हम सोच रहे थे कि इंद्र सोच रहे होंगे ये इस्कॉन वाले मेरे पीछे पड़ गए, एक बार गलती कर दी मैंने, ये छोड़ते ही नहीं है। जब देखो जहां पहले तो इस्कॉन के पहले केवल गोवर्धन पूजा के समय लोग कभी कभी याद कर लिया करते थे कि इंद्र ने गलती की है, लेकिन जब से ये इस्कॉन वाले आए हैं जब देखो मेरी गलती को सबको बताते रहते हैं। इसीलिए इंद्र थोड़ा क्रोधित हो गए कल कि फिर कल बोलने जा रहे हैं तो देखो मैं अपना क्रोध दिखा। तो बड़ी तेज आंधी थी, हमें तो लग रहा था पेड़ उखड़ जाएगा कल। तो इंद्र थोड़ा कुपित हो गए थे कल कि ये इस्कॉन वाले छोड़ेंगे नहीं, ठीक है गलती हो जाती है, मगर ऐसा थोड़ी कि आप उस गलती को बारंबार बारंबार कहते रहो, ये तो ठीक नहीं है। तो इंद्र थोड़ा ऐसे कह रहे थे। तो इंद्र जी इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि ये आपकी गलती आज ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों तक, सदियों तक दोहराई जाएगी और हर रोज दोहराई जाएगी, क्योंकि ये आपकी ऐसी गलती है जिसने कृष्ण प्रेम को प्रकट किया है, जिसने भक्तों के लिए एक ऐसा संदेश दिया है जो आगे आने वाले हजारों वर्ष तक पीढ़ी दर पीढ़ी भक्त इससे प्रेरणा लेते रहेंगे। तो इसीलिए हम भी आपकी गलती को बताने जा रहे हैं, क्षमा चाहते हैं इंद्रदेव से, कल उन्होंने थोड़ा सा क्रोध किया, लेकिन इसको थोड़ा सा आज कहेंगे। तो श्री कृष्ण वहीं पर थे, ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया और वहीं पर वो रहे, जैसे हम लोग इस श्लोक में पढ़ रहे हैं कि कृष्ण वहीं रहे कुछ समय तक, कृष्ण और बलराम। और उसी स्थान के पास उन्होंने देखा कि नंद महाराज इत्यादि सारे जो ग्वाल गोप हैं एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं इंद्र की प्रसन्नता के लिए। जानते तो सब थे लेकिन पहुंच गए वहां पर। कितने वर्ष के थे? 7 साल के बालक हैं, कोई बहुत बड़े नहीं हो गए थे जाकर जो अपने पिता को पूछें। 7 साल के बालक हैं, पहुंच गए पिताजी से पूछा, नंद महाराज से, ये क्या कर रहे हैं आप, ये इतनी सारी तैयारी, क्या अनुष्ठान हो रहा है, ये आप लोग जो कर रहे हैं इसको मुझे बताइए। देखिए जो साधु लोग होते हैं, श्री कृष्ण ने सोचा कि नंद महाराज कहेंगे तुम्हें क्या करना है, चुपचाप खेलो जाकर, क्योंकि ऐसा ही होता है ना। हम लोग भी बचपन में जब अपने माता पिता से कुछ पूछा करते थे किसी चीज के बारे में, तो हमें क्या जवाब मिलता था, पूछना नहीं चाहिए, सही है। हम लोगों ने मान लीजिए पूछा हो कि भई ये दिवाली पर ऐसे रात को क्यों पूजा करते, दिन में, पूछना नहीं चाहिए, राइट। एक ही उत्तर मिलता था, क्योंकि माता पिता को भी पता नहीं होता था, तो वो यही कहते थे कई चीजें हम लोग। तो यहां भी श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए जो साधु लोग होते हैं, क्योंकि कृष्ण का ये ना कहें कि मुझे चुप रहो, तो जो साधु होते हैं वो कभी कोई रहस्य नहीं रखते, छुपा कर नहीं रखते किसी बात को, इसलिए आप मुझे बता दीजिए, और फिर मैं तो आपका संबंधी हूं, अपने मित्रों को अपने संबंधियों को तो बातें बता देनी चाहिए। तो भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो साधु होते हैं उनका जीवन खुली किताब होना चाहिए, कोई छुपा कर नहीं रखना चाहिए। एक प्रचारक हो, एक भक्त हो, एक साधु हो, उसका जीवन खुला होना चाहिए, कोई रहस्य नहीं, कोई छुपी हुई बात नहीं, कोई सीक्रेट नहीं उसके जीवन में। क्योंकि सीक्रेट का अर्थ क्या है, अगर साधु कोई चीज छुपा रहा है उसका अर्थ क्या है, पाप है, सरल। तो इसलिए साधुओं को गुलाब जामुन वगैरह कभी छुपा लीजिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, साधुओं को कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए महाप्रसाद के अलावा, ओके। हम क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, नहीं तो आप सबके कबड़ में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या मिलने वाला है, इसलिए स्पष्ट कर दिए। तो भगवान कहते हैं कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बता दीजिए मुझे, मैं तो आपका पुत्र हूं, आपका संबंधी हूं, मुझे स्पष्ट बताइए क्या क्या रहे हैं आप। और कभी कभी भगवान कहते हैं कि कभी कभी लोग कुछ कार्य करते हैं उसके उद्देश्य को जानते हैं, और कभी ऐसा कार्य करते हैं जिसके उद्देश्य को नहीं जानते हैं। अगर उद्देश्य के जानकर कार्य किया जाए तो सफलता मिलती है, नहीं तो सफलता नहीं मिलती है। अर्थात भगवान ये कह रहे थे कि आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, और हमें भी बताइए अगर आपको पता है। या दूसरे शब्दों में भगवान हमें ये बता रहे थे कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको पूरी तरह समझ लेना चाहिए हमें, हम किस लिए ये कार्य कर रहे हैं, क्या उद्देश्य से कर रहे हैं। जब भी कोई कार्य किया जाए तो हमें कुछ चीजों को जरूर पता होना चाहिए। पहली चीज, उस कार्य को करने का सही मार्ग। दूसरी चीज, उस कार्य को करते हुए सही मार्गदर्शन। तीसरी चीज, उस कार्य का सही उद्देश्य, किस लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भक्ति करने का सही मार्ग क्या है, भक्ति का सही मार्ग बताने वाले गुरु कौन हैं, और भक्ति का सही उद्देश्य क्या है। अगर ये नहीं पता तो फिर कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, हम भटक जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, उद्देश्य पता होना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने देखा कि नंद महाराज शांत खड़े हैं, स्तब्ध देख रहे हैं उसकी ओर। ये 7 साल का बच्चा, ये इतनी बड़ी फिलॉसफी कहां से सीख कर आ गया। फिर उनको ध्यान आ रहा था कि हाँ, गर्ग मुनि ने कहा था कि ये नारायण के समान है, तो इसको तो बताना पड़ेगा, इससे कुछ छुपा नहीं सकते हैं। तो ऐसे जब सोच रहे थे तो कृष्ण ने और आगे कहा, कृष्ण ने कहा कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये शास्त्र के अनुसार है या केवल एक कोई परंपरा है, लोक परंपरा। तो 2 प्रकार के कार्य होते हैं, कुछ शास्त्र अनुमोदित और कुछ लोक परंपरा। तो कृष्ण पूछ रहे हैं ये क्या है, शास्त्र के आधार पर है या ऐसे ही लोक परंपरा चल रही है, तो कृपया मुझे बताइए। तो जब ऐसे प्रश्न कृष्ण ने किया तो नंद महाराज कहने लगे। नंद महाराज ने कहा कि देखो, हम लोग इस सभी लोग, हम नहीं, सभी लोग जल पर आश्रित हैं। जल होता है, अन्न निकलता है, हम खाते हैं, तो सब जल पर आश्रित है और ये जल दिया जाता है इंद्र के द्वारा। तो इसलिए ये इंद्र के लिए यज्ञ हो रहा है। और ये जान लो ये धार्मिक क्रिया है। अपने धर्म को कभी भी किसी व्यक्ति को काम के कारण, भय के कारण, या फिर ऐसे ही ध्यान नहीं देना उसके कारण, या फिर द्वेष या लोभ के कारण कभी भी अपने काम को त्यागना नहीं चाहिए, धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर बात नंद महाराज ने कही। इसलिए हमने कहा कि ये जो लीला है बड़ी विस्तार से होनी चाहिए, लेकिन संक्षेप में कह रहे हैं। तो नंद महाराज कह रहे हैं कि अगर हम अपने धर्म का पालन करने से हट जाते हैं, किस कारण से? कोई काम वासना के कारण, जय श्री श्री गौ नटराज दयाल निदायकी, कोई काम वासना के कारण, कोई भय के कारण, कोई लोभ के कारण, कोई द्वेष के कारण, तो ये ठीक नहीं है। अर्थात अपने कर्तव्य में हमें कभी कमी नहीं करनी चाहिए। हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं हमारे कर्तव्य के आड़े नहीं आनी चाहिए। हमारा भय कर्तव्य के आड़े नहीं आना चाहिए, लोभ द्वेष नहीं आना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने कर्तव्यों को इन कारणों से त्याग देते हैं। सेवा है भगवान की, लेकिन हमें किसी व्यक्ति से द्वेष हो जाता है, हम सेवा त्याग देते हैं। हमारे अंदर कोई भय आ जाता है, हम सेवा त्याग देते हैं। कोई लोभ आ जाता है, हम सेवा त्याग देते हैं। हमारी इच्छाएं हमें सेवा नहीं करने देती। इसीलिए नंद महाराज ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसे कारणों से अपनी सेवा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे जब उन्होंने कहा कि ये इंद्र के लिए यज्ञ हो रहा है, तो अब श्री कृष्ण इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, इंद्र को थोड़ा क्रोध आना चाहिए, दरअसल इंद्र का मान भंग करना चाहते थे। इंद्र, उन्होंने देखा कि इंद्र इतना अच्छा भक्त है मेरा, लेकिन इसके हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया। देखिए, भगवान जब भक्त के हृदय में अहंकार देखते हैं, उनको पसंद नहीं आता, और वो अलग अलग तरह से उस अहंकार को तोड़ते हैं। महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है न गौर भगवान। महाप्रभु के अनुयायियों की प्रमुखता विशेषता है वैराग्य। और वैराग्य मतलब, वैराग्य मतलब वन में जाना नहीं, वैराग्य मतलब भगवे धारण करना नहीं, वैराग्य मतलब घर बार छोड़कर बैठ जाना नहीं। वैराग्य का अर्थ है अहंकार को त्यागना। जब तक व्यक्ति ने अहंकार को नहीं त्यागा, वो वैरागी नहीं कहला सकता। जब तक व्यक्ति ने अपनी भोग प्रवृत्ति को नहीं त्यागा, वो वैरागी नहीं कहला सकता, वो तो फिर मिथ्याचारी है। जब तक व्यक्ति ने अपने हृदय में श्री कृष्ण को स्थापित नहीं किया, वो वैरागी नहीं कहला सकता। तो इसीलिए श्री कृष्ण अब सही दृष्टि में भक्ति को स्थापित करना चाहते हैं, इंद्र के हृदय में उसके मान को तोड़ना चाहते हैं, अहंकार को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए क्रोध दिलाने के लिए उन्होंने कहना शुरू किया। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये सब इंद्र से आता है, इंद्र की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हम आपको कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो कर्म के आधार पर होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रभु थोड़ा धीरे हैं, थोड़ा सा धीरे। जो भी होता है वो कर्म के आधार पर होता है। व्यक्ति अपने अपने कर्म करता है, कोई अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, कोई बुरा कर्म करता है तो बुरा मिलता है उसको। तो जो भी उसको मिल रहा है वो तो उसके कर्म का फल है। उसका जन्म, उसकी मृत्यु, उसका सुख, उसका दुख, सारा कर्म के आधार पर है। तो सब कुछ तो कर्म से होता है। और अगर आप सोचो कि नहीं, एक भगवान है, एक परम शक्ति है, तो वो परम शक्ति भी कर्म के आधार पर ही फल दे सकती है। भगवान किसी के जीवन में अच्छा बुरा कैसे करेंगे? जो उसने किया है उसके आधार पर। तो अंततः सब कुछ कर्म है। आप क्यों ये सोच रहे हैं कि इंद्र हमें कर रहा है? इंद्र हमारे भाग्य को बदल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि इंद्र क्या कर सकता है, हमारे जो कर्म किए हैं उसके आधार पर हमें कुछ दे सकता है, हमारे भाग्य बदल नहीं सकता इंद्र। फिर इंद्र की पूजा क्यों करना जब वो हमारा भाग्य बदल ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि कर्म ही व्यक्ति का शत्रु है, कर्म ही व्यक्ति का मित्र है, कर्म ही व्यक्ति का गुरु है। भगवान कह रहे हैं यहां पर कि वही गुरु है और वही भगवान है। क्यों? क्योंकि सब कुछ कर्म से होता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? वो कहने लगे कि अगर कोई व्यक्ति जिसके कारण सब कुछ हो रहा है उसको छोड़कर किसी अन्य की शरण जाता है तो वो तो बहुत गलत है। और हम लोग वैश्य परिवार से हैं, हमारा कार्य गोरक्षा करना है, गोरक्षा वाणिज्यम कृषि, गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तो हम लोग कार्य गोरक्षा करना है। और गायें कैसे, गायों की रक्षा कैसे होती है? गायों की रक्षा होती है जब वो इस गोवर्धन पर जाकर घास चरती हैं, तब गायों की रक्षा होती है। तो इसीलिए हम लोग कोई शहर में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, गांवों में भी रहने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग तो वन में रहने वाले वनवासी हैं। देखिए श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम गांव में भी नहीं रहते हैं? क्योंकि दरअसल वो लोग वनवासी थे, थोड़ा समय यहां थोड़ा समय वहां, जहां हरी घास हुई फिर वहां चल दिए। तो बोले हम लोग वनवासी हैं, हम लोग घास के ऊपर आश्रित हैं, गोवर्धन हमें घास देता है, गोवर्धन पानी देता है, अच्छे फल देता है, गायों के चरने का स्थान देता है। तो इसीलिए हमारे लिए इंद्र से ज्यादा गोवर्धन महत्वपूर्ण है। देखिए भगवान जब किसी का अहंकार तोड़ना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसे तोड़ते हैं कि बड़ी चोट लगती है। तो इंद्र की तुलना करें, इंद्र से ज्यादा महत्वपूर्ण तो गोवर्धन है, आप ये क्यों इंद्र की पूजा कर रहे हैं? तो उस समय जब ऐसे उन्होंने कहा तो भगवान ऐसे कह रहे हैं तो सारे ब्रजवासी बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि भगवान ऐसे कह रहे हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को भी लगता है ना कि हमें तो भगवान ऐसा नहीं कहते हैं, कितना अच्छा था ब्रजवासियों के लिए, को बता रहे थे ये गलत है वो गलत है ये नहीं करो। एक समय श्रील प्रभुपाद किसी मंदिर में थे, उस मंदिर में एक भक्त थे जो उनका उस समय सेवा थी भगवान की जो प्लेट्स होती हैं उसको धोना, आज वो सन्यासी हैं वो भक्त, तो उनका उस समय सेवा था कि वो प्लेट्स धोते थे पीछे बैकअप, भगवान को जब भोग लगता था वो प्लेटों को धोते थे। तो एक समय टेंपल प्रेसिडेंट उनके पास आए, उनका घबराए हुए थे और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने कहा है कि कृष्ण ने उनसे कहा कि प्लेट ठीक से नहीं धुल रही है, उसमें वो लगा रह जाता है थोड़ा सा। तो जो प्लेट धो रहे थे ये सोचने लगे क्या ये सच है कि नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जो छोटा सा लगा रह जाता है वो पुजारी तो देख नहीं पाता, क्योंकि पुजारी आता है जल्दी जल्दी डालता प्लेट बनाता है ले जाता है, पुजारी तो देख नहीं पाता। तो या तो मैं जो साफ कर रहा हूं मुझे पता होना चाहिए या फिर जो खा रहे हैं उनको पता होना चाहिए। तो जब प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद ने आकर कहा या प्रभुपाद ने प्रेसिडेंट से कहा, प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रभुपाद को कृष्ण ने कहा है कि साफ नहीं हो रही है, ठीक से साफ करो रह जाता है पहले दिन का, तो तब उनको विश्वास हो गया कि नहीं ये बात तो सही है, क्योंकि ये बात केवल कृष्ण जान सकते हैं या फिर जो धो रहा है, प्रभुपाद को कैसे पता चली। तो इसीलिए कृष्ण कभी कभी कंप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं कृष्ण कंप्लेन कि ये गलत हो रहा है, वो तो हम लोग ध्यान नहीं देते, वो बात अलग है हमारी प्लेटें गंदी रहती हैं। तो कृष्ण कई बार कंप्लेन करते हैं कि अरे प्लेट गंदी है, मंदिर गंदा है, आपका हृदय गंदा है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण यहां दे रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी कौन है? हम लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन ब्रजवासी पूरा ध्यान देते हैं। ब्रजवासियों को ये जो सिद्धांत कृष्ण बता रहे थे इससे कुछ लेना देना नहीं था, सरल सिंपल ब्रजवासी हैं, उनको क्या लेना देना, ये आप कर्म मीमांसा ये न्याय इत्यादि बता रहे हो तो कुछ लेना देना नहीं था, और ना ही उनको इंद्र से कुछ लेना देना। देखिए इसमें इस लीला में यह समझ में आता है, ना ही उनको इंद्र से कुछ लेना देना है, ना ये इतने बड़े बड़े सिद्धांत जो कृष्ण ने प्रस्तुत किए, उनको तो केवल सरल हृदय में कृष्ण से प्रेम है, इसीलिए जो कृष्ण कहते हैं वो कर लेते हैं। देखिए उन्होंने वाद नहीं किया कि अरे ये कैसे कह रहे हो कृष्ण, शास्त्र में तो ऐसा लिखा या हमने तो ऐसा सुना, हमारे वंशज ये करते आए हैं, हम कैसे बंद कर दें। कभी कभी होता है लोग जान जाते हैं हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, ये सारे देवी देवता, ये दुर्गा की पूजा, ये नवरात्रि, ये शिव जी, ये गणेश जी की पूजा 10 दिन सब बंद करनी है, जान जाते हैं, लेकिन एक डर रहता है, भय कुछ हो जाएगा। ब्रजवासियों को बिल्कुल भय नहीं था, उन्होंने कहा ही, जैसे ही कृष्ण ने कहा सब तैयार, ठीक है बताओ क्या करना है। इसे कहते हैं प्रेम, ऐसा प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए जहां कोई भय नहीं है, कोई अपनी इच्छा नहीं है। प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम हृदय से भय को निकाल देता है। अगर हमारे हृदय में सही दृष्टि में प्रेम है तो हम कभी भयभीत नहीं होंगे। भय कब होता है, जब आसक्ति होती है। भय कब होता है, जब कोई आशा होती है। प्रेम जब होता है तो कोई भय नहीं होना चाहिए। तो ब्रजवासियों के हृदय से भय नहीं था, सोचा नहीं कि इंद्र क्या करेंगे, और ना ही भय होता है प्रेम में, और ना ही कोई अपनी इच्छा। ब्रजवासियों ने यह भी प्रकट नहीं किया कि नहीं नहीं हमारे पिताजी भी करते थे, उनके पिताजी भी करते थे, हम कैसे बंद कर दें, हमारी इच्छा है, होना चाहिए। तो ना कोई इच्छा ना भय, केवल प्रेम। तो ब्रजवासियों ने ऐसे कहा कि ठीक है जो करना है आप बताइए। तो अब कृष्ण गोवर्धन पूजा कैसे करनी है वो बता रहे हैं। तो देखिए अब ये जो गोवर्धन लीला है भगवान ने की, भगवान केवल 7 वर्ष के थे जब उन्होंने ये लीला की, और उन्होंने गोवर्धन 7 दिन तक उठाया। और हम लोग अब गोवर्धन लीला के 7 कारणों को सुनेंगे कि भगवान ने गोवर्धन लीला क्यों की, क्योंकि उन्होंने भी 7 दिन तक उठाया, 7 साल के थे, तो हमने सोचा 7 कारण तो होने चाहिए गोवर्धन लीला के। श्रील प्रभुपाद ने भी जब इस्कॉन बनाया तो 7 उद्देश्य दिए हैं इस्कॉन के। तो पहला कारण है गोवर्धन लीला का, क्यों भगवान ये गोवर्धन लीला कर रहे हैं। पहला कारण, इंद्र के हृदय में उत्पन्न अहंकार को प्रेम में बदलना चाहते हैं। ये पहला कारण कि श्री कृष्ण ने ये लीला की। दूसरा कारण, श्री कृष्ण एक ऐसा उत्सव प्रारंभ करना चाहते थे जो आने वाली कई पीढ़ियां उसको मनाती रहे। अगर भगवान ने शुरू नहीं किया होता तो शायद हम लोग कभी गोवर्धन परिक्रमा नहीं करते। तो भगवान ने प्रारंभ कराया कि आने वाली कई पीढ़ियां हजारों हजारों साल तक एक उत्सव मना सकें। आज देखिए उत्सव मनाए जाते हैं, अन्नकूट होता है, हर जगह पर गोवर्धन मनता है। तो एक भगवान प्रारंभ करना चाहते थे एक उत्सव को, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, वो ये बताना चाहते थे कि मेरे जो भक्त हैं, अपने भक्तों को ये बताना चाहते थे, जैसे ब्रजवासियों इत्यादि को, उनको ये बताना चाहते थे कि तुम्हें सुरक्षा के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। और जब कृष्ण हैं तो हमें सुरक्षा का कोई भय नहीं होना चाहिए। तो ये बताना चाहते थे, जैसे हम लोग भजन गाते हैं, तुम्ही तो रक्षक आर पालक अमार, तुमार चरण बिना आशा नहीं आर। तुम्ही तो रक्षक आर पालक अमार, तुमार चरण बिना आशा नहीं आर। आप ही रक्षक हैं, आप ही पालक हैं। तो याद दिला रहे थे अपने भक्तों को, भूल गए हो मैं यहां हूं, फिर भी इंद्र से डरते हो, तो ये दिखलाने के लिए। चौथा कारण, श्री कृष्ण चाहते थे कि वे अपने भक्तों के साथ रहें। 7 दिन 7 रात सभी के साथ एक साथ, ऐसी एक ही लीला है। जहां न केवल गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब एक साथ थे, सारे ब्रजवासी एक साथ एक जगह पर 7 दिन 7 रातों तक। तो भगवान अपने भक्तों के साथ इस समय बिताना चाहते थे। 5वां कारण है, श्री कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते थे कि यज्ञ करना, दान करना ये ठीक है, लेकिन भक्ति इससे श्रेष्ठ है। तो भक्ति, ब्रजवासियों की भक्ति को दिखलाना चाहते कि देखो उन्होंने बरसों से चलती आई परंपरा को बंद कर दिया। भक्ति है हृदय में, प्रेम है हृदय में, तो भक्ति की श्रेष्ठता को वो स्थापित करना चाहते थे। 6वां कारण, वो ये बताना चाहते थे कि जितनी भी पूजा है वो दरअसल मेरे लिए बनी है। इसीलिए जब कृष्ण गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए, अपना उन्होंने साक्षात प्रकट हुए और सब कुछ स्वीकार किया उन्होंने, तो ये दिखलाने के लिए कि सारी पूजा का उद्देश्य मैं हूं। अगर कोई भी पूजा कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य श्री कृष्ण है। क्यों श्री कृष्ण है? क्योंकि जिनका नाम इतना शक्तिशाली हो, हम लोग भागवत में सुनते हैं पहले स्कंद में ऋषि मुनि जब प्रश्न पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी से, शौनक आदि ऋषि, तो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, आपन्न संस्मृतिम घोरा यन्नाम विवशो गृणन। वो कहते हैं आपन्न संस्मृतिम घोरा, कि व्यक्ति अगर बहुत कष्ट में, घोर कष्टों में भी पड़ा है, बंधन में पड़ा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आपन्न संस्मृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणन, और अगर विवश होकर भी भगवान का नाम ले लेता है, गलती से ले लेता है, अनजाने में ले लेता है भगवान का नाम विवशो गृणन, ऐसा नहीं कि वो बड़े प्रेम से ले रहा है, हृदय से ले रहा है, आचार्यों के आदेश अनुसार ले रहा है, यन नाम विवशो गृणन, तो क्या होता है? तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है, एक समय श्रील प्रभुपाद सुबह की सैर के लिए जा रहे थे, कई भक्त जाते थे। जब प्रभुपाद जाया करते थे तो भक्त एक दो भक्त रहते थे पीछे और बाकी उनके साथ जाते थे। तो जब जा रहे थे तो भक्तों ने देखा कि एक ट्रैक्टर जा रहा था जिसके ऊपर बहुत सारे गन्ने रखे हुए थे, गन्नों के खेत से आ रहे, उसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा इन लोगों को, तो उन्होंने कहा, ओ हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसा होता ना, लोग देखते हैं तो कहते हैं, तो उन्होंने ऐसे कहा। तो एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद इनको क्या, इनकी क्या गति होगी? उन्होंने ऐसे ही कहा हंसी मजाक में देखकर, हे ओ हरे रामा हरे कृष्णा। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद इनकी क्या गति होगी? प्रभुपाद ने कहा, दे विल बी लिबरेटेड, वो मुक्त हो जाएंगे। सब लोग शॉक हो गए, क्या ये अभी जाकर वो खेत में गन्ने काट रहे हैं, गन्ने खाएंगे, इनका कुछ लेना देना नहीं भक्ति से? प्रभुपाद कह रहे मुक्त हो जाएंगे। हाँ, क्यों? आपन्न संस्मृतिम घोराम, प्रभुपाद ने जो कहा शास्त्र के आधार पर कहा। तो इसीलिए भगवान जिनका नाम इतना शक्तिशाली है, जब वो स्वयं उपस्थित हो तो हमें किसी और की पूजा करने की क्या जरूरत है। तो ये 6वां कारण। और 7वां कारण, भगवान गोवर्धन का गुणगान कराना चाहते थे। अगर ये लीला नहीं की होती तो आज हम में से कौन गोवर्धन का इतना गुणगान करता, कौन परिक्रमा करता, कौन उसको इतने महत्व को समझता, कौन ये समझता कि गोवर्धन और भगवान अभिन्न है? तो भगवान ये लीला करना चाहते थे। तो इसलिए भगवान ने इन 7 कारणों से ये गोवर्धन लीला की। तो अब जब ब्रजवासियों ने पूछा कि हाँ बताइए कैसे करना है, तो भगवान ने कहा, बहुत सारे पकवान बनाओ, पहले अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। क्या क्या बनाओ वो भी उन्होंने लिस्ट दी थी, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो भगवान ने कहा कि पकवान बनाओ, दूध के पकवान बने, घी के पकवान बने, सारे बहुत उन्होंने कहा कि सब बनने चाहिए। और फिर जो ब्राह्मण है उनको बोलो यज्ञ करें, मंत्रों का उच्चारण करें और फिर इन लोगों को आप खिलाइए ब्राह्मणों को पहले, उसके बाद गायों को खिलाइए घास, अच्छी अच्छी घास खिलाइए ब्राह्मणों को, खिलाइए उनको दान दीजिए, फिर घास खिलाइए गायों को, और जब गाय संतुष्ट हो जाए तब जितना भी ये भोग बना है ये गोवर्धन को अर्पण कीजिए, ये जो यज्ञ में रखा तो पूरा भोग गोवर्धन को अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये हो जाए तो फिर आप सब लोग, कृष्ण कहते हैं कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनिए, अपने आप को सजाइए और हम सब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो भगवान ने ऐसा उनको कहा। तो अगली बार आप लोग भी कभी गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाइए तो ध्यान रखिए कपड़े अच्छे पहन के जाइए, भगवान ने कहा है, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए और तैयार हो जाइए, हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो फिर सब ने ऐसा ही किया जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, और जब भोग अर्पण किया तो स्वयं गोवर्धन, ये कहना चाहिए स्वयं कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए गोवर्धन के रूप में, ऊपर बैठे बड़ा विशाल रूप खाने के लिए सब। तो जैसे ही वहां हुए, एक वो थे एक नीचे खड़े थे कृष्ण, ऐसा थोड़ी कहते नीचे वाले गायब हो गए वो उधर आ गए, तो एक वहां कृष्ण एक यहां कृष्ण। तो कृष्ण ने देखा कि ये लोग सब ऐसे देख रहे हैं तो कृष्ण ने प्रणाम किया झुककर भगवान अपने आप को ही प्रणाम कर रहे हैं। तो कृष्ण के चलो 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 सब लोग प्रणाम करो, तो सबने प्रणाम किया कि देखो ये गोवर्धन ऐसे प्रकट हो गए हैं आप सबके सामने। भगवान कहने लगे तो देखो कैसे आए हैं, व्यक्तिगत रूप में आ गए हैं आपका भोग स्वीकार करने के लिए, चलो प्रणाम करो। कोई भी व्यक्ति अगर इनके प्रति अपराध करेगा, भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर इनको ध्यान नहीं देगा तो ये हमें मार सकते हैं, गोवर्धन जैसे आज रक्षा कर रहा है ये मार भी सकता है। तो आचार्यों ने समझाया कि मारने का अर्थ क्या होता है कि पर्वत में जैसे कभी कभी सर्प होते हैं जहरीले सर्प, या फिर हिंसक पशु होते हैं, और या फिर कभी कभी देखते हैं कि पत्थर गिरने लगते हैं पर्वत से तो उससे लोग मर जाते हैं। तो इस तरह से इन तीन तरह से गोवर्धन मार सकता था आचार्यों ने समझा। तो वैसे अगर हम लोग देखें जो तीन तरह हैं, भगवान ने क्या कहा कि अगर कोई गोवर्धन को ध्यान नहीं देता, गोवर्धन की अपमान करता है तो वो मारा जाएगा, इन तीन प्रकार से आचार्यों ने समझा। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो हम भी इन तीनों तरह से मारे जाते हैं। हमारे लिए तीन बहुत खतरनाक हैं, विषैले सर्प, हिंसक पशु और ऊपर से गिरने वाली बड़े बड़े पत्थर रॉक्स। तो इससे हम लोग मारे जाएंगे अगर हम कृष्ण को समर्पण नहीं करेंगे तो। तो कैसे मारे जाएंगे? पहली चीज, ये जो सर्प हैं विषैले सर्प, ये कौन है? ये हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तुलना सर्पों से की गई है। तो इंद्रियां हैं, अगर हमने इनको वश में नहीं रखा तो इनके विष के कारण हम मर जाएंगे। जैसे विषैला सर्प आकर डस देता है तो व्यक्ति मर जाता है, अगर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा तो इनसे जो विष निकलेगा उससे हम मर जाएंगे। ये है, हम जानते हैं कि हमारे पास तो इस समय 5 सर्प हैं कम से कम, हर एक के पास एक ही बहुत होता है मारने के लिए, लेकिन हमारे पास तो 5-5 हैं और उनको भी हम गले लगा कर घूमते हैं। तो इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना आवश्यक है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जब तक इन विषैले सर्पों को उनके दांत नहीं तोड़ेंगे, उनका विष नहीं निकालेंगे, तब तक ये नुकसान देते। देखिए एक सपेरा होता है, सपेरे को वही सांप उसकी जीविका का माध्यम बनता है ना। जो सांप अन्यों के लिए डरावना है, भयभीत है, मारने वाला है, वही सांप सपेरे के लिए जीविका का माध्यम है। इसी तरह एक भक्त को होना चाहिए, भक्त को सपेरे की तरह होना चाहिए। जो इंद्रियां अन्य व्यक्तियों को कृष्ण से दूर ले जा रही हैं, एक दक्ष भक्त उनके दांत तोड़कर उनका जहर निकालकर उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, और फिर जैसे एक सपेरे को उसी सर्प से जीविका प्राप्त होती है, वैसे ही एक भक्त को उन्हीं इंद्रियों से कृष्ण प्राप्त होते हैं। हमारी यही इंद्रियां चाहिए भक्ति के लिए, ऐसा नहीं है कि इंद्रिय विहीन होकर भक्ति करेंगे। तो ऐसे ही पहले सर्प की तुलना की गई है। दूसरा है पशु, हिंसक पशु। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कि जब एक व्यक्ति इस जगत में होता है, एक जंगल की तरह है, और जंगल में कई पशु मिलते हैं उसको जो उसको मारना चाहते हैं, या फिर डकैत मिलते हैं, दस्यु। तो जो पशु हैं ये कौन है व्यक्ति के लिए? एक विवाहित जीवन में जो पारिवारिक आसक्ति है, जिन व्यक्तियों से पारिवारिक आसक्ति है, वो ये हिंसक पशुओं की तरह है जो मार डालते हैं। जैसे कभी कभी कोई डाकू आते हैं, वो आपका धन लूट कर ले जाते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में तो आप डाकुओं को अपने पास में ही रखते हैं। व्यक्ति धन कमा कर लाता है भगवान की सेवा के लिए, लेकिन ये दस्यु घर में ही बैठे हैं और बड़ी प्रसन्नता से उसके धन को चुरा रहे हैं, और व्यक्ति भी बड़ा प्रसन्न है, आ बैल मुझे मार, कोई चिंता नहीं है। तो ये पशुओं के समान है, अर्थात ऐसी हर आसक्ति जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए वो हिंसक पशु है। और ये जो पत्थर गिरते हैं, भारी भारी पत्थर, ये क्या हैं? ये है शकटासुर, अर्थात हमारी भार वहन करने की आदत, कि हम अनावश्यक भार जो अपने जीवन में लेते हैं वो ये पर्वत के समान है। तो ऐसे श्री कृष्ण कहने लगे कि अगर हम समर्पण नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, अगर हम इनको ध्यान नहीं देंगे, तो फिर गोवर्धन ही हमारा वध कर सकता है। तो ऐसे कहने के बाद सब ने फिर प्रणाम किया श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद गोवर्धन के रूप में सबने श्री कृष्ण को प्रणाम किया था। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने इस पूजा को बहुत अच्छा माना। तो जैसे हम वर्णन कर रहे थे कि जब कैसे प्रदक्षिणा की, बड़े अच्छे अच्छे ढंग से उन्होंने कपड़े पहने, उसके बाद जो स्त्रियां थी वो बैलगाड़ियों पर बैठी, उन्होंने गायों को बैलों को आगे रखा, और गायों और बैलों को आगे रखकर फिर सब लोग बड़ी प्रसन्नता से कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते हुए पूरी उन्होंने परिक्रमा की। तो ऐसे ये गोवर्धन की पूजा का अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। तो श्री कृष्ण ने अब जो पूजा इंद्र की होनी थी वो होने नहीं दी, तो इसीलिए अब अगले अध्याय में इंद्र के क्रोध को प्रकट किया जाएगा कि कैसे इंद्र क्रोधित हुए, और हम लोग भी उससे सीखेंगे कि बहुत सारे निर्देश हमें जो प्राप्त होते हैं। आज के अध्याय में बहुत सुंदर उपदेश जो कर्म के आधार पर श्री कृष्ण ने दिए, हालांकि वो भक्ति से परे हैं, लेकिन केवल कृष्ण इनको प्रकट कर रहे थे ताकि ये यज्ञ इत्यादि बंद कर दें। तो ऐसे इस अध्याय में गोवर्धन की पूजा का वर्णन हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई जिज्ञासा? कोई प्रश्न, कोई शक? आर्मी में पूछा जाता है कोई शक, तो व्यक्ति को बोलना बिल्कुल नहीं। ओके, इसको थोड़ा पीछे करो, स्क्रीन को बस। ओके, यहाँ प्रश्न है क्या साउंड क्लियर नहीं आ रहा था? वॉइस यहाँ पे जाएगी, वॉल्यूम। ओके, प्रश्न है, आपने कहा कि पहले ब्राह्मण और फिर गाय और फिर गोवर्धन को, इन गोवर्धन में अंतर, कृष्ण और गोवर्धन में अंतर नहीं है, तो हम तो पहले कृष्ण को ऑफर करते हैं फिर अन्यों को, तो ऐसा क्यों? पहली चीज, ये हमने नहीं कहा है, ये कृष्ण ने कहा है। जब आप प्रश्न पूछें तो ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है आपने कहा कि पहले ब्राह्मण, हम नहीं कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं। तो ये क्यों कहा कृष्ण ने? क्योंकि ये यज्ञ का नियम था, भगवान चाहते थे कि पहले यज्ञ पूरा हो, ब्राह्मण संतुष्ट हो, क्योंकि श्री कृष्ण हैं गो ब्राह्मण हिताय च। तो श्री कृष्ण चाहते थे पहले ब्राह्मण संतुष्ट हो, गाय संतुष्ट हो, फिर मैं इसको स्वीकार करूंगा। तो इस चीज को बताने के लिए कि कितना प्रेम करते हैं गायों से, ब्राह्मणों से, श्री कृष्ण ने इसको कहा। दूसरी चीज ये कि यज्ञ करने का नियम होता है, जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में अर्पण करना मतलब भगवान को अर्पण करना, तो पहले तो भगवान को लग ही रहा है, लेकिन फिर वो सारा उन्होंने गोवर्धन को अर्पण किया, तो इसीलिए पहले तो अर्पण भगवान को ही हुआ है। ओके, तीसरा कारण पत्थर गिर के मरते हैं वो क्या है? हमने बताया था, भार वाहन करने की प्रवृत्ति है, और हमने इसलिए विस्तार से नहीं बताया क्योंकि शक्टासुर की कथा में उसको बड़े विस्तार से हम समझा चुके हैं। तो वो भार वाहन करने की जो आदत है, जय श्री गौरताई की, हम लोग इस जगत में अनावश्यक भार ग्रहण करते हैं, तो उसको पर्वत माना गया या पत्थर माना गया। पारिवारिक आसक्ति के विषय में कुछ कहिए। पारिवारिक आसक्ति ये बहुत स्वाभाविक है उन लोगों के लिए जिन्होंने पारिवारिक जीवन स्वीकार किया है। अपने बच्चों से बहुत प्रेम होता है, अपने परिवारजनों से बहुत प्रेम, बहुत आसक्ति होती है, और ये स्वाभाविक है। व्यासदेव को भी थी। व्यासदेव के जब पुत्र घर छोड़कर भाग रहे थे, जा रहे थे, तो व्यासदेव ने ये नहीं कहा जाने दो, अनासक्त हूँ। तो आसक्ति उनको भी थी, ये दिखलाने के लिए कि स्वाभाविक है। लेकिन इस स्वाभाविक आसक्ति को अगर हम कृष्ण की ओर लगाएं, जो आसक्ति हमें अपनी संतानों से होती है वही कृष्ण से हो, तो वो जीवन का उद्देश्य हो सकता है। तो जो पारिवारिक आसक्ति है ये हमें कृष्ण की ओर जाने से रोक देती है, ये हमें इस जगत के बंधन को बढ़ाने पर मजबूर कर देती है, ये हमें दुख और भय में डालती है। आसक्ति के कारण भय होता है। जैसे आजकल कई लोगों को ये भय है कि हमें हमारी चिंता नहीं है लेकिन हमारे परिवार के व्यक्ति को कुछ होना नहीं चाहिए, तो उससे उनको ज्यादा चिंता है, डर उनको वो है। तो आसक्ति ये भय को उत्पन्न करती है, लेकिन वही अगर आसक्ति कृष्ण में हो जाए तो फिर हम इससे परे हो सकते हैं। तो पारिवारिक आसक्ति है बच्चों में, धन में, संपत्ति में, इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी, जैसे हम भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं, अगर धन से आसक्ति निकालनी है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना शुरू करें। संतानों से आसक्ति निकालनी है तो हम उनको भक्त बनाएं, और जीवन का उद्देश्य यही हो कि ये चाहे इंजीनियर बने ना बने लेकिन भक्त जरूर बन जाए, भगवद गीता का ज्ञान ले ले, ताकि इसका जीवन सफल हो जाए और मेरे जीवन में ये एक हो जाए कि मैंने अपने जीवन में एक भक्त तो बना दिया, तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। ये ऊपर चला गया शायद। अच्छा, जप करते समय काउंटर में मोती ऊपर से नीचे करना चाहिए या नीचे से ऊपर? ओके, जप करते समय काउंटर में मोती ऊपर से नीचे करना चाहिए या नीचे से ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नीचे से ऊपर कीजिए या ऊपर से नीचे कीजिए। मूल उद्देश्य है कि हमें उसको गिनना चाहिए, तो गिनने की बात है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोवर्धन लीला दिवाली के दूसरे दिन हुई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ मंदिर में हम दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा करते हैं। हाँ सही है, ये गोवर्धन का जो पूजा है ये भगवान के द्वारा गोवर्धन धारण ये कार्तिक महीने में हुआ था। ओके, कल आपने बताया कृष्ण कथा भोजन है और उसमें निर्देश जो है वो दवाई, इसे थोड़ा सा समझाइए। आपको दवाई लेने की ज़्यादा इच्छा है। आज के कोई प्रश्न हो पहले उनको करेंगे, फिर बाद में कल के लेंगे। तो गोवर्धन शिला की पूजा के बारे में बताइए, कैसे भक्त उनकी पूजा कर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में लिखा है गोवर्धन लीला के विषय में कि गोवर्धन की जो शिला है भक्तों को उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो कृष्ण से अभिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं। तो कैसे करनी चाहिए गोवर्धन की पूजा? गोवर्धन शिला की पूजा के लिए सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि हम स्वयं जाकर गोवर्धन शिला उठा कर ना ले आएं। अगर कोई हमें ब्रजवासी दे देते हैं तब ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि गोवर्धन ब्रज से बाहर जाना नहीं चाहते। तो अगर आप ले आएंगे तो हो सकता है गोवर्धन को पसंद ना हो, और जब आ जाएं तो उनकी पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम भगवान की करते हैं, उनको भोग लगाना, आरती करना इत्यादि जो भी है, तो उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभिषेक भी उनका होना चाहिए। अगर जीवन में गोवर्धन परिक्रमा का अवसर प्राप्त हो तो किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? धन्यवाद। अगर हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे, वैसे कल थोड़ा और गोवर्धन परिक्रमा का वर्णन करेंगे, क्योंकि जब भक्त गोवर्धन परिक्रमा करते हैं बहुत 21 किलोमीटर का स्थान एरिया है, तो प्रारंभ साधारणतः प्रारंभ करते हैं मानसी गंगा में स्नान करके मुखारविंद से प्रणाम करते हुए, या मुखारविंद से मानसी गंगा से, और फिर जब आगे आते हैं धीरे धीरे गोविंद कुंड पर आते हैं, गोविंद कुंड के जैसे आप प्रारंभ करते हो परिक्रमा, तो जब मुखारविंद होता है वहाँ से आप आगे चलते हो, इस तरफ आपको इस्कॉन का मंदिर दिखाई देता है लेफ्ट में, फिर आगे जाते हैं गोविंद कुंड आता है, गोविंद कुंड से आगे निकलते हैं पुछड़ी का लोटा आता है, पुछड़ी का उसके बीच में और भी बहुत से स्थान हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल के जरा से आगे जाते ही संकर्षण कुंड है, चरणामृत कुंड है, और फिर और आगे जाते हैं तो गोविंद कुंड आता है, गोविंद कुंड के बाद फिर पुछड़ी का लोटा आता है, बीच में कई हैं अप्सरा कुंड इत्यादि, नवल कुंड, ये सब आते हैं, और फिर पुछड़ी के लोटा से घूम जाते हैं वापस, परिक्रमा आधी हो जाती है, फिर वो आते हैं वहाँ पर सुरभि कुंड आता है जो गोविंद कुंड के उस तरफ है, इस तरफ गोविंद कुंड है उस तरफ सुरभि कुंड है, फिर उसके आगे जतिपुरा में आते, जतिपुरा के आगे फिर निकलते हैं तो फिर से वो जो दान घाटी है उसको हम पार करते हैं। दान घाटी पार करने के बाद एक मार्केट आता है, तो परिक्रमा करते समय वहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए, पूड़ी सब्जी बहुत बनती रहती है, तो मार्केट से आँख बंद करके निकलना चाहिए, और फिर आगे चलकर थोड़ा सा लंबा रास्ता आता है, धूप हो तो बहुत कष्ट होता है, और फिर पहुँचते हैं उद्धव कुंड, उद्धव कुंड के बाद राधा कुंड, राधा कुंड से आगे आते हैं तो कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर के बाद मानसी गंगा, परिक्रमा पूरी हो गई। तो क्या करना चाहिए गोवर्धन परिक्रमा के समय, क्या उसके नियम हैं, कैसे क्या सावधानी रखनी है? पहली सावधानी ये रखनी चाहिए कि हम जब चल रहे हैं तो हमारे चरण गोवर्धन की किसी भी शिला को स्पर्श ना करें। दूसरी चीज़, हम लोग जूते चप्पल पहनकर परिक्रमा ना करें। गोवर्धन की परिक्रमा जूते चप्पल पहनकर नहीं की जाती, क्योंकि भगवान की परिक्रमा है, तो जूते चप्पल पहनकर ना करें, और हो सके तो जितना तो धीरे धीरे चलें, क्योंकि कभी कभी बहुत तेज चलते फिर थक जाते, फिर बैठते तो हो नहीं पाता, जितना चल सकते हैं जिस हिसाब से उसमें चलें, और स्मरण भगवान का हो, या तो जप करते हुए चलें, कीर्तन करते हुए चलें, या भगवान का स्मरण करते हुए चलें। अन्य कोई व्यर्थ की बातें ना करें, प्रजल्प ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, केवल कृष्ण की बातें हों, ऐसे ये परिक्रमा करें, और प्रयास करें पूरी परिक्रमा एक साथ करें, कभी कभी लोग आधे कर लेते फिर आधी बात में, ठीक है जिनको स्वास्थ्य के कारण नहीं हो पाता, लेकिन प्रयास करें कि पूरी परिक्रमा कर लें। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस्कॉन वृंदावन में चले जाइए, वहाँ से कोई भक्त मिल जाएंगे, उनके साथ परिक्रमा कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अच्छा, क्या हम सभी जगहों को बताने वाले हैं मानसी गंगा और गोवर्धन के आसपास? नहीं, ये गोवर्धन परिक्रमा का पूरा वर्णन करने जाएंगे तो फिर ये अध्याय पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन बहुत से सुंदर सुंदर स्थान हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि हरिदेव जी के दर्शन करके फिर गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ होती है। कई लोगों को तो हरिदेव जी का मंदिर कहाँ है वही नहीं पता गोवर्धन में, जो मानसी गंगा के निकट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वर्णन कर सकते हैं, और उस चरणामृत कुंड क्या है, वहाँ कौन सी लीला हुई थी, दान घाटी क्या है, दान घाटी में क्या लीला हुई थी। ऐसे करने जाएंगे तो कई दिन केवल गोवर्धन लीला होगी, किसी और दिन गोवर्धन परिक्रमा का वर्णन करेंगे। ठीक है, पहला एक प्रश्न था ऊपर लेना, कल, हाँ इधर है। कल आपने बताया कृष्ण कथा भोजन है और निर्देश जो है वो दवाई, इसको थोड़ा समझाइए। सो कृष्ण कथा भोजन है मतलब जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो बीमार व्यक्ति को दोनों चीज़ चाहिए। वो केवल दवाई खाकर ठीक नहीं हो सकता, तो उसको भोजन भी चाहिए, और केवल भोजन खाकर ठीक नहीं होता, दवाई भी चाहिए। तो इसीलिए ये जो कृष्ण कथा है वो भोजन है। भोजन मतलब बीमार व्यक्ति को अच्छा लगता है, जब खाता है थोड़ा पेट में शक्ति आती है। और जो सिद्धांत है उसके पीछे छुपे वो दवाई हैं, मतलब वो ऐसे कार्य करते हैं कि उसकी बीमारी को निकाल देते हैं। तो कृष्ण कथा आनंद देती है और उसको हमें लेना चाहिए ताकि शक्ति आए हमारे अंदर, और जो उसके पीछे छिपे सिद्धांत हैं, निर्देश हैं, वो दवाई की तरह हैं कि हमारे हृदय की आसक्तियाँ, हमारे हृदय के दुर्गुण, इन सबको वो साफ करती हैं। इसीलिए दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, कृष्ण कथा का फल क्या है? कृष्ण कथा का एक फल है कि आप लोग लॉकडाउन में बैठकर भी थोड़ा बहुत आनंद ले सकते हैं। कृष्ण कथा का ये फल है कि कम से कम एक घंटा आप लोग आपस में झगड़ा नहीं करते हैं लॉकडाउन के समय। तो ऐसे बहुत सारे फल हैं, लेकिन ये कोई आध्यात्मिक फल नहीं है। कृष्ण कथा का फल क्या है? कृष्ण कथा का फल भागवत में दिया गया है कि ये हमारी जो आसक्तियों की गांठें हृदय में हैं उनको काट देती है। छिंदन्ति को विदस्तस्य को न कुरियात कथा रतिम। जब हमारी रति प्रेम कथा में होती है तो जितनी भी हमारे हृदय में ग्रंथियां हैं, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदस्तस्य, तो कर्मों की जो ग्रंथि है, गांठें हैं, वो काट डालती है। ये पहला कार्य करती है कृष्ण कथा। दूसरा कार्य कृष्ण कथा करती है कि अब गांठें कट गई लेकिन हृदय में कुछ है नहीं, तो हृदय शुद्धिकरण करती है। वो जो गंदगियां हैं वो सब अभी भी बाकी हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म रूप में, उनको साफ करती है। और तीसरा कार्य कृष्ण को या उनके प्रेम को हृदय में स्थापित करती है, कृष्ण का ज्ञान देती है, कृष्ण के प्रेम को प्रदान करती हैं, आचार्यों की कृपा को प्रदान करती हैं, भक्तों की चरण धूली या भक्तों के मुख से खाया हुआ प्रसाद, जिसको महाप्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद, वो कृष्ण कथा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, भागवत के प्रारंभ में कहा गया शुक मुखाद, जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से आया पहले से ही मधुर है और मधुर हो गया। तो इसीलिए ये कृष्ण कथा कई स्तर पर कार्य करती है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। शरीर के स्तर पर हमें केवल कथा सुनने से हमारा जो शरीर है वो तैयार हो जाता है भगवान की सेवा के लिए, मन को शुद्ध करती है उसके दूषणों से और आत्मा को आनंद देती है उसके आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न है? पारिवारिक जीवन में आसक्ति, व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो क्या वो जीवन में आसक्ति से दूर होकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है? निश्चित बढ़ सकता है, और यही एक मार्ग है। अन्य कोई मार्ग नहीं है आसक्तियों से दूर जाने का। अन्य सारे मार्ग आसक्तियों को बढ़ाने के लिए हैं। व्यक्ति कर्मकांड करता है आसक्ति को बढ़ाने के लिए, कि आसक्ति बढ़ जाती है, आज मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए। भक्ति ही एक ही ऐसा मार्ग है जो हमारी आसक्तियों को काट सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आसक्ति को सच्ची जगह लगाता है। देखिए, जीव की आसक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी हमारी कोई आसक्ति ना हो। केवल वो आसक्ति सही जगह लगना जरूरी है। तो अन्य मार्ग क्या करते हैं? आसक्ति को काटने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आसक्ति एक स्प्रिंग की तरह है। तो स्प्रिंग जानते हैं आप, ऐसा होता है, उसको दबाइए दबाइए दबाइए, एकदम दब जाता है। लेकिन जरा सा छोड़िए तो इतनी तेजी से ऊपर आता है। तो भक्ति के अलावा अन्य सारे मार्ग उस स्प्रिंग को, उस आसक्ति नाम के स्प्रिंग को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दबा नहीं पाते, क्योंकि जैसे अवसर मिलता है और तेजी से आता है। लेकिन भक्ति क्या करती है? उस स्प्रिंग को कहीं उपयोग में ले आती है। स्प्रिंग तो रहेगा ही, तो उसका कहीं उपयोग ले आती है। तो ऐसे ही आसक्ति रहेगी, भक्ति हमारी आसक्ति का सही उद्देश्य हमें समझाती है। भक्ति हमारी आसक्ति को सही चरणों तक ले जाती है। और जब वही आसक्ति जो हमें आज भौतिक भोगों में है, परिवार में है, बस कृष्ण की ओर मुड़ जाए, तो फिर जीवन सफल हो जाता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत तेज गेंदबाज वो गेंद डालता है, तो जो अगर दक्ष खिलाड़ी है उसको पूरी अपनी शक्ति से मारने का प्रयास नहीं करता, उसको केवल एक दिशा दे देता है, है ना? ऐसे मारते, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, उसको बैट से मारते, उसको क्या बोलते हैं? या फ्लिक या स्क्वायर ड्राइव या कौन सा ड्राइव, पता नहीं, जो भी है। हाँ, अच्छा, सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो वो जो भी, एनीवे, तो वो दिशा दे देता है। तो दिशा देता है तो क्या होता है, जो तीव्रता, जो तेज स्पीड उसकी थी बॉल की, उसको खाली दिशा दे दी, वो उसी स्पीड से बाउंड्री पे चली जाती है। तो एक दक्ष भक्त यही होता है कि आसक्तियां वो तेज गेंदबाज की तरह हमारी ओर आ रही है बड़ी तेजी से, मगर अगर हमने भक्ति के द्वारा उनको बस एक अच्छी दिशा दे दी, तो वही आसक्ति हमें, क्या बोलते हैं, बाउंड्री तक ले जा सकती है, मतलब इस जगत की बाउंड्री को पार करा सकती है। ठीक है, जब 16 के ऊपर करने का मन नहीं करता है, जय हो, कोई बात नहीं, कम से कम 16 कर रहे हैं, करते रहिए, धीरे धीरे मन करने लगेगा। कभी कभी मन किन्हीं कारणों का इंतजार करता है। हम एक भक्त को जानते हैं, नैरोबी से हैं वो, उनको कई बार लोगों ने कहा जप करिए जप करिए, ज्यादा नहीं, एक दो माला, तीन माला, चार माला। एक दिन वो कहीं फंस गई, माता जी कहीं फंस गई, जहाँ एक होटल था जहाँ वो बैठी हुई थी, और उसमें आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया, और वो देख रही थी, उनके सामने कोई मर रहे हैं, धार, वो छुपी हुई थी, और उनके सामने शरीर आकर गिर रहे हैं, धड़ा धड़ धड़ा धड़ गोलियां मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, काफी घंटे, 72 घंटे सीज किया था उन्होंने उसको। तो वो वहां पर थी और उन्होंने देखा, और अगले दिन से 16 माला जप करना शुरू कर दिया। तो हमें पता नहीं कि आप 16 माला के ऊपर करने का इंतजार किस लिए कर रहे हैं, कि आप क्या चाहते हैं। इनको 16 माला कराने के लिए भगवान को कई लोगों को मारना पड़ा, है ना? तब इन्होंने देखा कि अरे ये मर गया, ये मर रहा, ठीक है, 16 माला शुरू कर दी। पता नहीं आप किसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर 16 कर रहे हैं तो कृपया करते रहिए। एकादशी में साबूदाना खाना चाहिए या नहीं, कोई हाँ कहते हैं और कोई ना कहते हैं। एकादशी में सबसे अच्छा है उपवास करना चाहिए। खाने की चिंता क्यों करें? अभी तो एकादशी शुरू हुई है, अभी से आपने खाने की चिंता कर दी है, दिन भर क्या होगा? प्रश्न ये पूछते कि एकादशी में 64 माला करना चाहिए कि नहीं, कोई कहते हैं हाँ कोई कहते हैं ना, तो इसलिए खैर फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो ये बता देते हैं। भक्तों का ये मानना है कि जो साबूदाना है वो बनता ठीक से नहीं है, उसको जैसे बनाया जाता है वो अच्छी तरह से नहीं बनता, जिस चीज़ से बनता है वो सही नहीं है, इसीलिए कई स्थानों पर ये साबूदाना खाना बंद हो गया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो जो श्यामा राइस है, क्या बोलते हैं उसको, श्यामा चावल, वरी वरी बोलते हैं ना, वरी या कुछ ऐसा, तो वो भी नहीं खाना चाहिए, वो भी एक्चुअली अन्न है, ये गलत है कि वो अन्न नहीं है, तो ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो हमारा ये मानना है कि कोई सही हो सकते हैं कोई गलत हो सकते हैं, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, फल खाइए, जूस पीजिए, ज़रूरी नहीं है कि एकादशी के दिन हम बिना एकादशी पिज़्ज़ा के रह नहीं सकते, जब तक एकादशी का वो वड़ा नहीं बनेगा आनंद ही नहीं, पता कैसे चलेगा एकादशी आई है, जब तक एकादशी के दिन वो टिक्की नहीं बने, हमें ध्यान है कुछ महीने पहले हम खैर नाम नहीं लेंगे कहीं थे, तो वहाँ उस स्थान में उन्होंने एकादशी के दिन हमें प्रसाद के लिए बुलाया था और इतने आइटम बनाए थे, इतने आइटम कि सब बन रहा था, तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए, तो कैसे ये बन सकता है। तो भक्तों को ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं देना चाहिए, उद्देश्य ये है कि एकादशी के दिन हम कम खाएं, इसका एक उद्देश्य है कि उतना समय हम भगवान की भक्ति में लगाएं, 4 माला और कर लें, अगर 1 घंटा लगता है कुकिंग में तो 8 माला कर लें, तो इसलिए उद्देश्य ये होना चाहिए, ये नहीं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। वक्त तो एकादशी के 3 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। हाउ कैन आई फील दैट वी आर एडवांसिंग इन डिवोशन, ओके, कैसे पता चले कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? पहला लक्षण भक्ति में आगे बढ़ने का है, भक्तों से प्रेम हो रहा है या नहीं। दूसरा लक्षण, जप के प्रति रुचि बढ़ रही है या नहीं, कि केवल एक मैकेनिकल बस 16 माला टांग दिया उसके बाद अगले दिन तक देखना नहीं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसका पहला लक्षण भक्तों से प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं। दूसरा लक्षण, भगवान के नाम में रुचि बढ़ रही है कि नहीं। तीसरा लक्षण, कथा की ओर आतुरता बढ़ रही है कि नहीं, कि हमें अगर कथा सुनने नहीं मिली तो क्या हृदय में बड़ा दुख होता है कि अरे रह गया कैसे रह गया, तो कथा के प्रति आतुरता बढ़ी कि नहीं ये। और हाँ, अंततः ये एक तरफ है, दूसरा लक्षण दूसरी तरफ, हमारी पारिवारिक आसक्ति कम हुई कि नहीं हुई, आज भी भोग करने की प्रवृत्ति बनी हुई है या थोड़ी हो गई है, आज भी हमें इस जगत में आनंद लेने का बड़ी इच्छा है या वो थोड़ी कम हो गई है, ये कुछ लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हम रोज देख रहे हैं कि कई कई जगहों से आप लोग सब आए हुए हैं, जुड़ रहे हैं, तो आभारी हैं, ऐसे ही कुछ दिन और सहन कर लीजिए, फिर भारत सरकार की कृपा से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।